नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज का सुबह का सत्र में हम लोग श्रीमद् भागवतम की सातवें स्कंद अध्याय 8 जिसमें भगवान श्री नृसिंहदेव के द्वारा असुरराज का वध, उसी शीर्षक में 16 श्लोक नंबर 16 है, हैं 16 है, सभी क्रमण्यो पुत्र वदैपुरराशा निशम्य निहृदम पूर्वम अद्रुतम अंतः सभायान ददर्शनात्पत् वितत्र सूर्यन् सुरारिपूजत्वा सह विक्रमात् पुत्र वदप्सु ओजसा निशम्य निहर्दम अपूर्वम अद्भुतम अंतः सभायां नहि ददर्श तत्पदम् वितस्त सूर्येण सुरारिजूतपा सह वह हिरण्यकशिपु विक्रमन अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पुत्र बाधाइप्सु अपने ही पुत्र का वध करने का इच्छुक ओजसा अत्यंत बलपूर्वक निशम्य सुनकर निर्हार्दम भयानक ध्वनि को अपूर्वम पहले कभी ना सुनी सुनी गई अद्भुतम अत्यंत अद्भुत अंत सभायम सभा के भीतर ना नहीं ददर्श देखा तत्पदम उस भयानक आवाज के स्रोत्र को वितस्तस्तु भयभीत हुए येना जिस ध्वनि से सुरारिजूथपा असुरों के अन्य नेता हिरण्यकशिपु ही नहीं, मतलब सारे असुर जितने थे हिरण्यकशिपु को छोड़कर अपने ही पुत्र को मारने के इच्छुक हिरण्यकशिपु ने जो इस तरह अपना अद्वितीय शरीर दिखला रहा था, जब एक अद्वैत भीषण घोर ध्वनि सुनी तो जैसे कि जैसे इसकी पूर्व उनसे कभी नहीं सुना था। इसी ध्वनि को सुनकर अन्य असुर नायक भी भयभीत हुए। उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम का कोई नहीं ढूंढ पाया। श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवद गीता सातवें अध्याय आठवें श्लोक में ये कहा गई कि कृष्ण यह कहकर अपने व्याख्या करते हैं कि रस अहम सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणवम सर्व वेदेशु शब्दखे पवशम नृषु, अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं ही जल का स्वाद, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्र का ओम शब्द तथा आकाश एवं मनुष्य के पुरुषार्थ की ध्वनि हूँ। यहाँ पर भगवान ने आकाश में भीषण ध्वनि द्वारा अर्थक शब्द है सर्वत्र अपनी उपस्थित प्रकट की। अब हिरण्यकश्यपु जैसे असुर भगवान की परम नियंत्रक शक्ति का अनुभव कर सके, और इसी प्रकार हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया। मनुष्य चाहे कितने बलशाली क्यों न हो, यह वज्रपात की ध्वनि से सदैव भयभीत रहता है। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप तथा उसके सारे संगी असुर उसी ध्वनि के रूप उपस्थित परमेश्वर की उपस्थिति से भयभीत थे, यद्यपि वह उसी ध्वनि के उद्गम का पता नहीं लगा पाए। प्रभुपाद की ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रिय भक्त सज्जन बंधु माताएं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि ये ब्रजभूमि वृंदावन में ब्रजवासियों के साथ जो आप यहाँ वास करते हैं, श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का और उसको कुछ मनन करने का ये मौका आप हमको दिए, इसलिए बहुत बहुत आभारी हैं आप सबका। तो श्रीमद् भागवतम में जो 10 प्रकार का विषय वस्तु है, सर्ग विसर्ग आदि, तो इसी सातवें अध्याय में विशेष करके उति अर्थात कर्म वासना के बारे में वर्णन किए गए। विशेष करके इस सातवें स्कंद में 15 अध्याय हैं। इसमें पहले 5 अध्याय जो हैं ये भौतिक कर्म वासन के बारे में विचार ये वर्णन किए गए हैं, जिसको आप श्रवण कर चुके हैं। और उसके बाद आध्यात्मिक कर्म वासना जो कि हम लोग सुनते थे, अभी सुन रहे हैं प्रहलाद महाराज की चरित्र, और कैसे शिव भगवान हिरण्यकशिप को उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, नरसिंह भगवान का प्रकट और प्रहलाद महाराज की स्तुति आदि। और तीसरे जो पांच अध्याय हैं अंत में, उसमें मिश्र कर्म वासना के बारे में वर्णन किए गए। तो ये विषय वस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण, विशेष करके जो भगवत भक्ति के अनुयायी हैं और उनको शरण अनुसरण करने के लिए जो प्रयास भक्त हैं, उनके लिए बहुत ही उपादेय है। क्योंकि ये जो कर्म वासना है, ये जो कर्म वासना, ये ऐसे एक जन्म का कर्म वासना नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, पता नहीं किस कितने प्रकार के ब्रह्मांड और कितने कई हजार लाखों अरब जन्म हम लोग बिताए हैं। उसी सभी जन्म का जो कर्म हम लोग किए हैं, उसी कर्म का जो फल है, वो सब इसमें प्रिंट है, इसको कर्म वासना कहते हैं। तो उसी कर्म वासना को कैसे ये भगवत भक्ति हम जो जाजन करते हैं, तो उसी भगवत भक्ति में उसी कर्म वासना को कैसे हम लोग समूल में ये करेंगे। क्योंकि जब तक ये कर्म वासना थोड़ी ही रंच मात्रा में रहे, तब तक हमको भगवत भक्ति और भगवान के श्री चरण कमल में स्थान पाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसको बड़ी ध्यान पूर्वक हम लोग ये करना चाहिए। हम लोग कभी भी ये विचार करके आराम से नहीं रहना चाहिए कि नहीं इसी कर्म तो अब हम कर दिए, बस भक्ति में आगे तक तो लग गए, तो ये ही समूल विपात हो जाएगा। इसी भूल को जब हम ये कर जाएंगे, फिर वास्तविक जीवन का लक्ष्य साधन नहीं होगा। तो यहां इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं वास्तविक कि ये कितने बड़े प्रतिबंध वास्तविक कर्म वासना जो है। जबकि हम यहां पे श्रवण कर रहे हैं हिरण्यकशिप अपने पुत्र जो प्रहलाद महाराज को बद्ध करने के लिए कितना भी प्रयास किया, साधारण युग में हम तो देखते हैं कि साधारण लोग में कोई भी पिता चाहे कितने भी क्रूर क्यों ना हो, अपने पुत्र को बद्ध करने के लिए इतना प्रयास नहीं करेगा जितना हिरण्यकश्यप ने किया था, है ना। लेकिन श्रीमद् भागवत में इसकी चर्चा जो दिए गई, इसको समझना चाहिए कितने एक्सट्रीम तक हम पहुंच सकते वास्तविक कर्म वासना के बल में। क्योंकि इसकी जो कर्म वासना का जो व्यग्र है, जो बैग है, इतने प्रबल है, वो आपको कहीं तक भी पहुंच जा सकता है। जैसे हम बिल्लो मंगल ठाकुर जी का चरित्र में सब सुनते हैं, क्योंकि जब बिल्लो मंगल ठाकुर ने चिंतामणि बेसिया से मिलने के लिए प्रयास किए, तो चाहे उनके पिता का श्राद्ध क्यों ना हो, इतना बाढ़ आ गए, ये भी नदी भी बढ़ गए थे, सर्प को रजु समझ कर भी पक ये कर लिए। देखिए कितने प्रबल मात्रा में ये कर्म वासना का ये रहता है। उसी वासना को पूर्ति करने के लिए चाहे कितने तक हम जा सकते हैं, तक पार कर सकते हैं, है ना। तो इसको कितना भयंकर हम लोग समझना चाहिए कि ये कितना भयंकर है वास्तविक। श्रीमद् भागवत में इसलिए इसका दिया गया कि जब हम इसको महत्व समझें कि ये कितने भयंकर तक पहुंच सकता है और हमारा भक्ति को कितने ये तक निष्पात कर सकता है ये, तब भक्ति के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा ये बढ़ेगा। नहीं तो भक्ति करने के लिए नहीं, हमारा जो प्रयास कर रहे हैं उतना सुदृढ़ नहीं होंगे हम भक्ति में। टीला डर ठीक है, 16 माला तक कर दिया, गुरु महाराज बताए, भक्ति कर रहे हैं, चार नियम तो पालन कर रहे हैं अवश्य, थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाते हैं, ठीक है वो चलता रहेगा। ऐसे हम लोग उसको ले जाएंगे तो फिर ये कर्म वासना से ये नहीं होंगे। और कर्म वासना क्या है, कितने प्रकार का है, ये भी दो प्रकार का है, एक इसका बृहत रूप में कर्म वासना है और एक सूक्ष्म रूप में कर्म वासना है, जिसको आप छठवीं स्कंद में श्रीमद भागवतम में श्रवण किए हैं अजामिली चरित्र में। जबकि इसी कर्म वासना के कारण सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे कि इसके कारण दंड भोगते हैं सभी जीवा जीवात्माएं जाके हैं नरक में। तो परीक्षित महाराज पूछे कि ये इसका कारण क्यों करता है लोग पाप, तो उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे ऐसे कर्म वासना, इसको तो दूसरा दूसरा कुछ अच्छा फल किया जाए, कर्म किया जाए, कोई अटनमेंट कोई ये किया जाए तो उसमें उसका शुद्ध हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि न यार, ये जो अटनमेंट आप कह रहे हैं ना, ये सही चीज नहीं है। तो फिर इसी कर्म वासना को समूल, उसको जड़ से कैसे उखाड़ सकते हैं, एकमात्र भगवान का भक्ति। क्योंकि श्री ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि कर्माणि निर्दहन्ति किंतु च भक्ति भाजा, है ना, एकमात्र भगवान के जो भक्ति है वो सब प्रकार का कर्म वासना से एकमात्र इसकी प्रभाव है, प्रभाव में ये कर्म वासना को हम जड़ से उखाड़ सकते हैं। और दूसरे कोई भी बंधन नहीं है, चाहे कितने भी यज्ञ करो, कितने भी तपस्या करो, कितने भी दान करो, कुछ भी आप करो, इसके माध्यम से कर्म वासना का आप तोड़ नहीं सकते। क्योंकि ये कर्म वासना का जो सूक्ष्म रूप है, ये अपने हृदय में इसमें रहेगा उसका सूक्ष्म रूप में। और जब कोई उसको अनुकूल ये मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, ये उनका उसका अंकुरित धीरे धीरे चालू करेगा। ही भक्ति हम लोग कर रहे हैं, इसकी छोटा उदाहरण देने से आप लोग समझ सकते हैं। जब आप कृष्ण भावनामृत में पहले आए तो उसी कृष्ण भावनामृत आने से पहले हम लोग बहुत व्यग्र थे, कैसे मंगला आरती आना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, चार नियम कड़ी नियम से पालन करना है, 16 माला को कैसे भी एक इसमें खत्म जब करना है। और धीरे 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 जब ऐसे कुछ हो गया, दीक्षा प्राप्त हो गया, तो बोले कि ठीक है मंगला आरती हर दिन नहीं, घर में मोबाइल में देख लेंगे ना मंगला आरती, है ना, आज बारिश हो रही, कौन इतना देर चल के जाएगा कृष्ण बलराम के पास, है ना, इसमें घर में आजकल तो माया देवी ने बहुत सुंदर ये दे दिए, मोबाइल में देख लेंगे उसको, लाइव तो दिखा रहे हैं ना, उसको देख लेंगे, है ना। और धीरे धीरे क्या होगा, वो लाइव देखना, कभी कभी नींद आ जाएगा, उस लाइव को समय पर नहीं पहुंच पे ये हो जाए हो पाएंगे, 4:30 तक हम तैयार नहीं हो पाएंगे देखने के लिए लाइव। फिर धीरे 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 धीरे, हाँ ठीक है आज एक दिन छूट गया ना, कल भी देख लेंगे, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, शायद आप लोग को नहीं होगा, हमारे होगा, हमारे जीवन में ऐसे हुआ था इसलिए हम कह रहे हैं आपको, है ना। तो धीरे 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 ऐसे करके इतना ढीला हो जाते हैं, फिर ठीक है कहते हैं कि नहीं संडे को चला जाएंगे, संडे को कोई काम नहीं है, धन ये नहीं है, संडे को खाली चला जाएंगे। तो हफ्ता से 7 दिन के बाद अभी संडे में आके पहुंच गए, है ना। और संडे के बाद फिर धीरे 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 ढीला पड़ के फिर नहीं, खाली फेस्टिवल में जन्माष्टमी राधाष्टमी जो आएगा उसी में चला जाएंगे, है ना, यहाँ पे वैसे पहुंच गए। और धीरे धीरे देखते हैं तो उसके भी फेस्टिवल भी नहीं आ पाता, रे ये काम लग गया, बच्चे इधर पढ़ रहे, उधर ये हो रहे हैं, यहाँ ऐसे करके छूट गया। ये किसके काम है, ये जो कर्म वासना पहले ये हो के था, अपने सूक्ष्म रूप में था, धीरे धीरे आपका मन में घुस कर क्या किया, वो आपने प्रमटी किया, नहीं जाने से ठीक है ना, 16 माला तो कर रहे हैं, जब भगवान को तो अर्पित प्रसाद पा रहे हैं, और तो कुछ ना कुछ प्रभुपाद का किताब तो पढ़ रहे हैं, नहीं जाने से क्या होगा कृष्ण बलराम मंदिर को, ये धीरे धीरे आपको ऐसे सलाह देता है मन आपको। तो अरे ये कर्म वासना धीरे धीरे क्या करते है, उसको इतना अवरुद्ध कर लेता है, तो धीरे धीरे फिर कृष्ण बलराम को आप कम्प्लीटली भूल जाते हैं। तो इसलिए बड़ी सावधान से उसको ये करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसको सलाह में कहते इसी भावार्थ में कि हम हर समय कैसे हर जगह में भगवान को कैसे स्मरण करेंगे, कि जब हर समय हर क्षण में जब भगवान को स्मरण नहीं करेंगे तो तभी किसी भी समय में ऐसे इसी कर्म वासना उगने के लिए इसका समय मिल जाएगा उसको। तब जब 24 घंटा इसको स्मरण कीर्तन में जाएंगे तो तब जाके ये कर्म वासना ये होकर रहेगा, उसका समूल विवाद होगा। और उसको थोड़ा सा हम ढीला कर देंगे तो फिर कहेंगे अरे तो फिर कर्म वासना का ये। तो प्रभुपाद इसलिए कहते कि ये जो उनका तात्पर्य इसलिए प्रभुपाद इसलिए दिए कि रसांश कमती है। जब कोई एक व्यक्ति सोच सकता है कि जैसे हम भक्ति कर रहे हैं ना, हम लोग सोच सकते कि यहाँ तो हिरण्यकश्यपु ने जैसे ये किया, अपने गदा में प्रहार किया कि अपने मुष्टि का प्रहार किया खंभा को, तब भयंकर शब्द सुना है ना, तो उसमें इतना अपना आध्यात्मिक जगत जगत में और जीवन में उन्नति करने का इतना ठीक है, ये एक स्टोरी है ऐसे कह देते हैं ना हम लोग, ये कहानी है इसको पढ़ के बस ये करते। लेकिन प्रभुपाद कितना गहरा तक जाते हैं इनके पावार्थ में देखना चाहिए। प्रभुपाद इसको कहते तात्पर्य में कहते कि हिरण्यकश्यप ने जो श्रवण किया आवाज उसमें भयभीत हुआ, जो कि सारे जगत जिसको देख के भयभीत होते थे वो आदमी को है ना, जो सबको भयभीत करने वाला है था वो अभी ऐसे कौन सा आवाज सुना कि जो वो खुद ही भयभीत हो गया। मतलब जो आवाज था ये कोई साधारण आवाज नहीं था। अरे ये आवाज कहां से आया था? भगवत धाम से, भगवान से ये से प्रकट हुआ था। ये कोई भौतिक जगत का आवाज नहीं था। इसको प्रभुपाद कहते कि हर कोई वस्तु में जब भगवान का सत्ता हम उपलब्धि करेंगे तो वही वास्तविक कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत का एक सरल संज्ञाशील प्रभुपाद कहते कि हर एक वस्तु में श्री भगवान का सत्ता उसमें उपलब्धि करना। हम तो पढ़ लेते हैं भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जम जम जहां जहां हम लोग देखते हैं सब प्रकार का इस जगह में हमको दर्शन करना, लेकिन उसको कैसे हम देख सकते हैं? भगवान कहते जो पंडित हैं वो समदर्शी ने सभी का हृदय में भगवान को दर्शन करते हैं, कुत्ते बिल्ली हाथी मनुष्य आदि सबके से ब्राह्मण कभी अस्ति सब में देखते हैं, वो कैसे संभव हो सकता है? तो ये ऐसे संभव हो सकता है, इसलिए भगवत गीता का प्रभुपाद ने ये श्लोक दिया कि रस अहमसु कौन्तेय, अर्थात रस अर्थात जो स्वाद है किसी में, जल में जो स्वाद है वो कौन है? श्री भगवान का स्वरूप है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इसी संसार में कौन है ऐसे जो कि पानी नहीं पीता है? ऐसे कोई है कि जो पानी नहीं पीता है, जल नहीं पीता है ऐसे कोई ऐसे? लेकिन जब पानी पीते हम कितने लोग, इवन हम कृष्ण भावनामृत में आने के बाद भी बाहर की दुनिया के लोग तो छोड़िए, क्योंकि हम लोग जहां पे जो उपस्थित हैं कृष्ण भावना भाव में इसमें इसी पथ में आग्रही है, इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग कितने सारे भक्त हैं, आप अपने को पर्यालोचना कीजिए कि हम जब जल पीते हैं तो उसमें श्री भगवान को अनुभूति करते हैं, तो उसी में से ही आपको पता चल जाएगा कि हम कितने कृष्ण भावना भावित हैं, है ना। ये श्लोक केवल बाहर के लोग को समझाने के लिए नहीं है, विशेष करके श्रीमद भागवत में श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक को दिए हैं यहाँ पे इसी इसमें, जबकि हिरण्यकश्यप का बात चल रहा है कि हिरण्यकश्यप का भी मारने वाले हैं भगवान है ना, तो उसी का बात चर्चा में प्रभुपाद कहते हैं कि कैसे हम भगवान को सर्वता सब जगह में उसको अनुभूति कर सकते भगवान को। जैसे कि फेमस स्टोरी हम कई बार बोल चुके हैं, श्रील प्रभुपाद जी एक बार न्यूयॉर्क शहर में थे, तो कुछ भक्त ने सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा पहले मनाए थे, उसी समय में कोई ये नहीं था मंदिर का विशेष ये नहीं था, तो उसे प्रभुपाद के लिए एक होटल किराए में लिए थे रहने के लिए प्रभुपाद जी के लिए। तो प्रभुपाद जब होटल में रुके थे तो होटल का जो बाथरूम का टैप था, नल था, उसमें पानी टपक रहा था, धीरे धीरे चू रहा था, नीचे गिर रहा था। तो प्रभुपाद जब रात को 1 बजे उठे, अपने ट्रांसलेशन का सेवा शुरू किए, तो उसी समय वो आवाज, उनको ये लगा कि आवाज कहीं बाथरूम से आ रहा है। तो तुरंत तो उनके जो सेवक हैं उनको बुलाए, बोला कि ये का आवाज कहाँ से आ रहे हैं। तो सेवक को मालूम था ये आवाज कहाँ रहे, तुरंत जाके बताया कि प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद ये तो बाथरूम का नल का आवाज है, पानी टपक रहा है। तो प्रभुपाद बोले कि इसको फिक्स करो, इसको सही कराओ। बोले कि प्रभुपाद इसको क्या जरूरत है सही करना, हम तो किराए में है ना ये होटल में, 5 दिन के बाद हम लोग चला जाएंगे, वो होटल का मालिक जो है वो ठीक कराएगा ना उसको। तो प्रभुपाद जो ट्रांसलेशन कर रहे थे, तुरंत उस भक्त को देखे उनके सामने बड़े ये करके। प्रभुपाद बोले कि दिस इज कृष्णा एनर्जी, ये कृष्ण का शक्ति है, तुरंत उसको ठीक कराओ जाके। वो बेचारे भक्त आधी रात में जाके उसको ठीक कराया नल को। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि जो विजन है, इसलिए प्रभुपाद इसको क्यों लिखते हैं ये तात्पर्य में, जब हम पढ़ते थे इसी तात्पर्य को तो हम समझे थे कि प्रभुपाद का जो विजन था, उनका दूरदृष्टि कितना देर तक दूर तक रहता था, कि प्रभुपाद ये देखते थे कि पानी बूंद बूंद गिर रहे हैं तो उसमें ये कृष्ण का शक्ति अपचय हो रहा है। हम लोग कितने पानी अपचय कर रहे हैं, टैप खोल रहे हैं तो बस चलने दीजिए, है ना, पानी बह रहा है तो बह रहे हैं। कई कई भक्त लोग तो ब्रश कर रहे हैं, पानी अपने नल को खोल दिए, बस ब्रश कर रहे हैं। अरे ब्रश खोले तो नल को खोलना क्या जरूरी है, है ना। कई हम बता देते तो भक्त, अरे महाराज बड़े कंजूसी हैं, कहते हैं जरूरी नहीं है ना, भगवान का शक्ति है पानी, भगवान ने ऐसे नहीं दे दिया कि पानी ऐसे आ रहे हैं, मुफ्त में आ रहे हैं। हमको तो यहाँ बड़े सौभाग्य है कि भगवान ने पानी दिए, जो आप अरब देश में जाएंगे तो वहां पानी है नहीं, वहां पेट्रोल सस्ता है पानी महंगा है ना। पेट्रोल को पी सकते हैं क्या आप, है ना। कोई बुद्धिमान व्यक्ति बोले कि नहीं ये तो दामी है चीज, इसको पी लें। तो वहां देखिए ये कारण उसका है। कभी कभी हम उसको चर्चा ये करते हैं, पर्यालोचना करते हैं अपने मन में, तो भक्त लोग इतने कठिनाई में वहां पे क्यों है इस जगह में जिसमें पानी का व्यवस्था नहीं है। 1 बाल्टी पानी करते 2 बाल्टी पानी करते उसमें नहाना धोना कपड़े धोना सब कुछ उसमें हो जाता है। हम तो यहाँ कई बाल्टी चला जाता है एक बार में, क्योंकि उसका महत्व समझता है पानी का, कि यह कितना महत्वपूर्ण है ये पानी। क्योंकि 2 बाल्टी हम खर्च करेंगे तो इतने पैसा हमको लगेगा, वो समझता है आदमी, तो उसमें 2 बाल्टी में काम चल जाता है। लेकिन वही आदमी जब आके यहाँ पहुंच जाता है वो 20 बाल्टी खाली कर देता है, यहाँ पानी का महत्व नहीं समझता है। तो यही है कृष्ण भावना मूर्ति का पार्थक्य है। कृष्ण भावना मूर्ति आने वाले व्यक्ति ये सोचना चाहिए कि हर समय हम कैसे हैं भगवान का उपस्थित समझ, कि जब वो अरब में थे वो पानी का महत्व समझते, वहां कृष्ण को समझते थे, यहाँ इंडिया आ गए तो नहीं समझते, है ना, कृष्ण चला गए पानी से। तो यही बात है यहाँ देखने का, कि प्रभुपाद कहते हैं कि मतलब यहाँ जैसे हिरण्यकश्यप सुन रहा है कि ये आवाज क्यों इतना, इसका पार्थक्य क्या है, कि क्योंकि ये आवाज जो है इसी भौतिक जगत का आवाज नहीं था, ये भगवान का शक्ति था, आवाज था ये, इसलिए ये भौतिक जगत का आवाज से संपूर्ण ही अलग था। ये हम लोग समझना चाहिए कि प्रभुपाद क्यों इसको ये श्लोक का ऊपर इसको भाष्य में लिखा है। हर कोई वस्तु हम लोग जब यहाँ पे देखते हैं कि हमेशा हम लोग को ये चिंतन में रहना चाहिए कि ये भगवान का ही शक्ति है, क्योंकि बिना भगवान का शक्ति से कोई भी चीज ऐसे नहीं कि संभव है, नहीं हो सकता, टिक नहीं सकता इस। तो हम फिर क्या क्या करते, कभी कभी समय में अनदेखा कर देते कि जो हमको अच्छा लगता है हम सोचते कि ना रे बस यही है भगवान की शक्ति है और बाकी कुछ ये नहीं है। तो इसलिए वो कृष्ण भावना मृत नहीं है। कृष्ण भावना तो उसको कहलाएगा कि जब हर एक वस्तु में भगवत सत्ता का अनुभूति करें, यही है कृष्ण भावना। तो इसलिए प्रभुपाद आगे बताते हैं कि जब इसी को हम लोग समझ लेंगे, ये भगवत सत्ता को, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद कहे कि रसम से कौंतेय प्रभाव शशि सूर्य, ये जो आलोक हम लोग देखते हैं कि ये शशि और सूर्य, सूर्यदेव जो सूर्यदेव और शशि अर्थात चंद्रमा, ये मेरे से ही आता है भगवान कहते हैं। लेकिन हम कितने लोग उसको अनुभूति करते हैं कि ये भगवान का आंखें हैं दोनों, ये भगवान धाम से आता है। कभी कभी हम लोग वैज्ञानिक बन जाते हैं, हम लोग अरे ये तो साधारण ग्रह है, नक्षत्र हैं, ऐसे हैं, उसको ऐसे ऐसे प्रकार का विभ्रांति कर ये कहते हैं। लेकिन वो तो छोड़िए, भौतिक जगत का लोग का यही चिंता है। लेकिन भगवत भक्ति में आकर भी फिर भी हम लोग नहीं सोच सकते, सूर्य किरण और चंद्र ग्रह, वो तो हम सोचते हैं कि मैं बस हमारा ये प्राप्त है, वो हमको मिल जाता है। नहीं, भगवान चाहेंगे तो उनका इच्छा मात्र से उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। नहीं, आप उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती देना है, आप सूर्य को चंद्रमा का आप देना है। तो अंधेरी रात में अमावस्या में फिर चंद्रमा क्यों नहीं दिख जाती है, हर दिन तो दिखते हैं, सूर्यदेव फिर रात को क्यों नहीं दिखते है? नहीं कि ये भगवान का शक्ति है, भगवान जब चाहेंगे उनकी कृपा से हम देख सकते हैं सूर्यदेव को। तो इसलिए हम इसको अनुभूति करना, प्रभुपाद इसके कहने का तात्पर्य है कि प्राणव सब वेदेशु ओंकार, ये जो ओम शब्द है वेद में जो दिए गए, ये भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। और जो ओजस है मतलब मनुष्य का अंदर जो शक्ति है, सामर्थ्य है, भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझते कि हमारा अंदर जो शक्ति है ये हमारा, ये भगवान की द्वारा दिए गई है। शक्ति तो हम लोग कहते कि नहीं, हम लोग ज्यादा, डॉक्टर लोग कहते कि नहीं आप ज्यादा प्रोटीन विटामिन खा लेंगे तो शक्ति हो जाएगा, है ना। अभी इसकी अनुभूति भगवान ने हमको कुछ महीने पहले दिए हैं, है ना। कितने भी विटामिन आप खाए, कितने भी ये कहें, कितने ये छोटा एक बीमारी आ गया तो उसको कोई प्रतिरोधक नहीं कर पाए, है ना। लाखों सारे विश्व के जितने सारे डॉक्टर थे सब फैल मार गए, तो शक्ति क्यों नहीं आ रहा है फिर, रोग प्रतिरोधक का शक्ति क्यों नहीं आ रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि इस विटामिन खाने से, ये इंजेक्शन देने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर कहां गया आपका, ओके काम नहीं कर रहे हैं अभी। तो वास्तविक शक्ति जो उसके पिछले हम लोग देखे ओलंपिक गेम चल रहा था, वहां पे जो 365 किलो का 500 किलो उठा रहे, वो बोले कि नहीं हम तो इतना दिन गया था इसमें, जिम में गया था, इतना प्रैक्टिस किया था, वो किया था, इसमें हम लोग ये हो गया। वो भगवान का सत्ता का विश्वास नहीं करता है। भगवान कहते बड़म बड़म बत्ता महम, ये जो जितना बल हम प्राप्त किए हैं, भगवान कहते मैं उसका स्रोत हूं, मेरे से ही आता है ये बल। लेकिन हम कहते कि नहीं हमारा बल तो उसमें आता है, पौष्टिक आहार से आता है, प्रैक्टिस करने से आता है बल। अरे उसी प्रैक्टिस के बालू नहीं, फिर जब बुढ़ापा आ जाते हैं हम लोग पानी गिलास भी उठा नहीं पाते हैं। उसी आदमी जो 500 किलो उठा रहा था, अब एक पानी गिलास भी उठा नहीं पा रहे, क्यों नहीं उठा पा रहे? तो उसी शक्ति को भगवान विड्रॉ कर देते हैं। जब उसी शक्ति को हम भगवान के सेवा में लगा नहीं पा रहे हैं, तो भगवान धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको विड्रॉ करते हैं। तो उसी शक्ति को जब भगवान के सेवा में हम लगाएंगे, तब वास्तविक उस शक्ति का फिर भगवान हमको शक्तिमान बना लेते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं रामायण में। रामायण में हम देखते हैं कि हनुमान जी जो थे वो साधारण बंदर ही थे ना, वृंदावन सबका आपका अनुभूत है, अनुभव सब बंदर है, बंदर का सबका अनुभूति है ना, नहीं यहाँ पे। लेकिन कितने बंदर को आप पूछते हैं, बंदर को पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पे, हनुमान तो उनकी फैमिली का है ना, उसी कैटेगरी, लेकिन उनको क्यों पूछते हैं? वो किसके कारण से आप पूछते हैं हनुमान जी को? भगवान राम से संबंधी है इसलिए पूछते हैं ना। तो उनका शक्ति को कैसे प्रदर्शन किए हनुमान जी? भगवान राम जी के सेवा में प्रदर्शन किए। ये भगवत गीता में जो शक्ति था अर्जुन का, भगवान ने सर्वश्रेष्ठ धनुधर उनको बना दिए थे। लेकिन वही बात, वो आदमी कह रहा है कि नहीं हम आप युद्ध नहीं करेंगे प्रभु। भगवान कहे कि तुमको सर्वश्रेष्ठ धनुधर हम बना दिया, फिर तुम कह रहे कि युद्ध नहीं करेगा हमारे, तो काम किसी बात का है? नहीं, तो भगवान ने फिर उनकी शक्ति को कैसे प्रदर्शन करेंगे उनकी सेवा के लिए, उनको भगवान ने सलाह दिए। तो यही बात यहाँ पे प्रभुपाद हमको समझाना चाहते हैं कि हर समय, क्योंकि कभी कभी समय ऐसे आ जाते हैं हम लोग को भूलने का चांस ही बहुत हैं, क्योंकि भगवान बहुत ही अच्छी तरीका जानते हैं कि इसी भौतिक संसार जो बनाया गया है यहाँ पे आदमी हर समय भूलने के लिए बहुत ही व्यवस्था दिए गए हैं। भगवान से भूलने के लिए बहुत ही व्यवस्था यहाँ पे दिए गए, क्योंकि जब इसी भूल भुलैया में रह जाएगा तो फिर हमारा भक्ति कैसे करेगा। नवमा अध्याय में अंत में भगवान कहते हैं कि मनमना भव मत भक्त मत जाजी माम नमस्कुर कहते। जब अर्जुन पूछते कि प्रभु आपका कैसे मनन करेंगे, आपका चिंतन कैसे करेंगे, बताइए तो आप कैसे। बात है कि हम हमेशा कोई बात है आपका चिंतन, आप कह रहे कि चिंतन करो मनन करो मेरे भक्त बनो, मन में हमारा कैसे क्या हम मनन करेंगे। कोई ऐसे बड़ा बुद्धिमान है कह रहे निराकार को मनन करो, है ना, निराकार को कितने देर तक मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान ने कह दे दसवीं अध्याय में अपने विराट रूप का अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किए बताएं। पहले तो भगवान ने बताया कि हमको खुद को मालूम नहीं हम कौन है ना, लेकिन ठीक है तुम पूछ रहे थे कुछ थोड़ा बात बता रहे हैं कि कैसे मनन करना चाहिए ये भौतिक जगत में, क्योंकि हम भौतिक जगत में है ना। भौतिक जगत में श्री भगवान जो कि संपूर्ण रूप में आध्यात्मिक है उसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं भौतिक रूप में प्रकट होते हैं जगत में, ताकि हमारे जो आंखें हैं भौतिक आंखें हैं उनको देख सकते हैं। इसलिए भगवान श्री विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं कि श्री विग्रह जो है वो श्री विग्रह किस में बना हुआ है, धातु में बना हुआ है, पत्थर में बना हुआ है, पटचित्र में बना हुआ है। तो उसको कोई समझ लेके आ रहे तो इसमें ही बना हुआ बस यही चीज, इसको भगवान करके पूछते हैं क्या। लेकिन उनको समझना चाहिए कि भगवान हमारा लिए ही बस ऐसे कि प्रकट हुई है, ऐसे नहीं कि भगवान को आना है। भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों को विशेष करके इसी भौतिक जगत में जो लोग भौतिक जगत का चक्कर काट रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, उनको कैसे उद्धार प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने क्या कृपा करके इसी विग्रह में आके स्थापित ये रहते हैं, नहीं तो भगवान को क्या जरूरी है आज ने पत्थर रूप में आके खड़ा होना। दिन भर आप खड़ा रहेंगे, कोई कपड़े पहनाएगा तो पहनेंगे, खाना देगा तो खाएंगे, है ना। जिसको लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम में सेवे मानो, जो भगवान को हमेशा सेवा करते हैं उन्हीं भगवान को क्या आना जरूरी है पत्थर का ही इसी रूप में आने का। ये हमारे लिए भगवान देखिए कितना दे ये तक जा सकते श्री भगवान ने, किस लिए, हमारे ऊपर करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए। लेकिन हम कभी कभी इतना ये हो जाते हैं तो उसी कृपा को जो भगवान ने इतना करुणा ये प्रकाश किया हमारे ऊपर, उसी कृपा को हम लोग लेने के लिए समर्थ नहीं होते समर्थ। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का ये अध्याय में विशेष करके जो दिए गए हिरण्यकश्यप का उद्धार, मतलब बध दिए गए, मतलब उद्धार जो प्राप्त हुआ हिरण्यकश्यप, ये भगवान का विशेष करुणा के कारण है ना। नहीं तो हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस जो खुद को भगवान बोल के मानता था तो उनका उद्धार कैसे होता। भगवान जो कि अपने धाम में नित्य निवास करते हैं, हमेशा विराजमान रहते हैं, उनको क्या जरूरी था ऐसे आधा एक शेर ना कोई पशु है ना मनुष्य है ऐसे विचित्र रूप में आने का क्या जरूरी था, है ना। ये हिरण्यकश्यप को वैसे कृपा करने के लिए भगवान ने ऐसे, और हम जो भक्त हैं जो अनुजाई हैं भक्ति करने के रास्ता में प्रयासी हैं, उन्हीं भक्त लोग जब हम ये श्रवण करते हैं ये लीला, प्रहलाद महाराज कितने सारे सताया हिरण्यकश्यप ने, है ना। हमको तो इतना सताना नहीं, ऐसे कठिनाई है क्या हमारा जीवन में, हम जो भक्ति में आते हैं ऐसे कठिनाई तो है नहीं। हमारे लिए कठिनाई क्या है, ये जो दिए गए श्रीमद् भागवत है उसको पढ़ के उसको समझना कठिनाई हो जाता है ना। अरे उसको समझने के बाद अपने जिंदगी में उसको ये करना, उतारना, ये कठिनाई हो जाता है। लेकिन जो सिंसियर जो भक्त चाहेगा कि नहीं हमको तो अपने जीवन में जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो प्रयास होगा तो उनको तो किसी भी हालत में क्या करना चाहिए, उस जो दिए गए हरे के जो उसमें उपदेश दिए गए, जो आदेश दिए गए, भगवान की जो कथा दिए गए, उसको हर क्षण में, हर पल में, हर अवस्था में कैसे उसको चिंतन करेगा, उसको मनन करेगा, उसको श्रवण करना, उसके लिए व्याकुल होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसी अध्याय में और विशेष करके इसी श्लोक में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे ये अवस्था हमारा प्राप्त होगा, हर समय हर पल में कैसे हम भगवान का चिंतन मनन कर सकते हैं। ये प्रसमय ये अवस्था तब प्राप्त होगा जब हम हर जगह में भगवान को देखें। और विशेष करके इसी कलि युग में श्री भगवान ने आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री चैतन्य महाप्रभु कहे कि आप 24 घंटा ये नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते, दान आदि पुण्य कर्म नहीं कर सकते, आप ब्रह्मचारी होकर जाकर आश्रम में नहीं रह सकते घर द्वार छोड़ के, है ना। तो आप जहां भी रहिए गृह थाक बने थाक सदा हरि बलि डाक सुखे दुखे भूलना का बदने हरि नाम कर रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हर समय श्री प्रभुपाद कहते कि हर समय हर क्षण में श्री भगवान हमारे सामने उपस्थित है, ऐसे कोई समय नहीं है कि भगवान हमारे सामने नहीं है, ऐसे विचार नहीं करना चाहिए कभी। तो इसलिए हर समय हर परिस्थिति में जब भगवान का चिंतन मनन स्मरण करेंगे तो फिर हमको भगवान यथाई शीघ्र प्राप्त होंगे, यही जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। कोई मन में किसका प्रश्न है, कोई विचार है मन में, और कोई त्रुटियां हैं तो गलती हैं तो उसको सुधार कर सकते हैं।